सात विविध प्रोफेसर मैकडॉनल्ड आदि ने यजुर्वेद के विषय में कुछ स्वतंत्र विचार प्रस्तुत किए हैं। संक्षेप में वे इस प्रकार हैं। एक, यजुर्वेद की रचना के चार स्तर। क, मूल भाग अध्याय 1 से 18 है। ख, अध्याय 19 से 25 बाद की रचना है। ग, अध्याय 26 से 39 बाद में जोड़ा गया है। घ, अध्याय 40 यह ईश उपनिषद मात्र है। इस प्रकार यजुर्वेद इन चार स्तरों में क्रमशः विकसित हुआ है। दो, यज्ञों का असाधारण महत्व। यजुर्वेद में यज्ञों को असाधारण महत्व दिया गया है। इनसे आवश्यकता अनुसार वृष्टि, समृद्धि और मनवांछित फल की प्राप्ति बताई गई है। यहाँ तक कि पुरोहितों के इच्छानुसार संभव एवं असंभव सभी फल देने की क्षमता यज्ञों में बताई गई है। तीन, देवों का स्वरूप विकास। ऋग्वेद में प्रजापति, रुद्र और विष्णु का महत्व कम था, यजुर्वेद में इन देवों का महत्व बढ़ गया है। प्रजापति मुख्य देवता हो गए हैं। रुद्र शिव, शंकर और महादेव के रूप में विकसित हुए हैं। विष्णु अब यज्ञ स्वरूप और यज्ञ नारायण हो गए हैं। असुर शब्द जो ऋग्वेद में बलिष्ठ का वाचक था, अब केवल दैत्यों का पर्याय हो गया है। ऋग्वेद में अप्सराओं का उल्लेख नाम मात्र है, परंतु यजुर्वेद में उनका महत्व, सौंदर्य और आकर्षकता बढ़ गई है। उर्वशी का नाम उल्लेख तक मिलता है। चार, पुरोहितों का महत्व। यज्ञ के महत्व के साथ ब्राह्मणों का महत्व भी बढ़ा। यहाँ तक कि यज्ञ के द्वारा देवता तो ब्राह्मणों की मुट्ठी में थे। पाँच, जाति व्यवस्था का संगठन। यजुर्वेद काल में जाति व्यवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और सुदृढ़ हो गई। चातुर्वर्ण के अतिरिक्त वर्ण संकर जन्य जातियों के भी नाम प्राप्त होते हैं। यज्ञ और कर्मकांडों के द्वारा ब्राह्मणों का सामाजिक एवं धार्मिक महत्व बहुत बढ़ गया। आठ, यजुर्वेद के महत्वपूर्ण अध्याय। यजुर्वेद के कुछ अध्याय भाव गांभीर्य के कारण विशेष महत्वपूर्ण हैं। उनका यहाँ दिग्दर्शन कराया जा रहा है। एक, अध्याय 9 और 10, इनमें राजा का राज्याभिषेक, राजा के अधिकार और कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन है। राजा के कर्तव्यों में उल्लेख है कि एक, वह कृषि की उन्नति करे, दो, जन कल्याण करे, तीन, राष्ट्र की श्रीवृद्धि करे, चार, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करे। एक अन्य मंत्र में कहा गया है कि जनता में राष्ट्रीय भावना का विकास होना चाहिए। एक मंत्र में महान जनराज्य अर्थात विशाल प्रजातंत्री राज्य की स्थापना लक्ष्य बताया गया है। एक अन्य मंत्र में राष्ट्र के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि एक, वह स्वराज अर्थात स्वतंत्र राष्ट्र हो, दो, जनहित हो अर्थात राष्ट्र की समस्त प्रजा का हित चिंतन होना चाहिए, तीन, विश्ववृत्त हो अर्थात अपने राष्ट्र की उन्नति के साथ विश्व कल्याण और विश्व बंधुत्व की स्थापना करे, क, कृष्यैत्वा क्षेमायत्वा रय्यैत्वा पोषायत्वा, ख, राष्ट्रदा राष्ट्रम में दत्त, ग, महते जानराज्याय, घ, स्वराजस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम अमुस्मै दत्त, जनभृतस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम अमुस्मै दत्त, विश्ववृत्तस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम अमुस्मै दत्त। दो, अध्याय 11, विज्ञान की दृष्टि से यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वर्णन किया गया है कि अथर्वा ऋषि ने दो महत्वपूर्ण आविष्कार किए थे। एक, जल के मंथन से विद्युत का उत्पादन। दो, उत्खनन के द्वारा पुरुष अग्नि, तेल और प्राकृतिक गैस का निकलना। मंत्र 28 से 32 तक इन दोनों आविष्कारों का विस्तार से वर्णन है। क, त्वामग्ने पुष्करादधि अथर्वा निर्मन्थत्। ख, पृथिव्याः सधस्थादग्निं पुरुष्यम् अङ्गिरस्वत्खनामि। तीन, अध्याय 9, इसके एक मंत्र में सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के होने का स्पष्ट उल्लेख है। हाइड्रोजन के लिए मंत्र में अपाम रस जल का सार भाग शब्द है और हीलियम के लिए अपाम रसस्य यो रसः प्रयोग है। सूर्य संतम के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ये दोनों गैसें सूर्य में हैं। अपाम रसम उद्वयसम सूर्य संतम समाहितम अपाम रसस्य यो रसः तम वो गृहणाम्युत्तमम। चार, अध्याय 16 यह रुद्राध्याय है। इसके द्वारा शतरुद्रीय होम किया जाता है। इसमें रुद्र के विराट रूप का वर्णन है। इसमें रुद्र के शिव और रुद्र दोनों रूपों का वर्णन है। इसमें रुद्र को असंख्य बताते हुए पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक में सर्वत्र व्याप्त बताया गया है। रुद्र को वृक्ष वन औषधि आदि का स्वामी बताते हुए इसे वृक्ष वनस्पति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह कार्बन डाइऑक्साइड रूपी विषय पीता है और ऑक्सीजन रूपी अमृत छोड़ता है। यह शिव का वृक्ष के रूप में विषपान और अमृत दान है। इस अध्याय में रुद्र को सेनापति, गणपति, शिल्पी, योद्धा, कवचधारी, शंभु और शंकर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम अंतरिक्षे भवा अधि दिवं रुद्रा उपश्रिताः। ख वृक्षाणां पतये औषधीनां पतये वनानां पतये। ग नमो गणेभ्यो गणपतिभ्य सेनानिभ्य कर्मारेभ्य संभवाय शंकराय च। पांच अध्याय 31 और 32। अध्याय 31 पुरुष सूक्त है, इसे विष्णु सूक्त भी कहते हैं। अध्याय 31 और 32 में विराट पुरुष का वर्णन है। उससे ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उससे ही ब्राह्मण आदि चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं, उसके ज्ञान से ही मुक्ति होती है। वह सर्वव्यापक है, वह एक है, उसके ही अग्नि, वायु, सूर्य, ब्रह्म आदि अनेक नाम हैं, उसमें ही सारा संसार समाहित है, वही संसार में ओतप्रोत है, उसके ज्ञान से ही व्यक्ति ब्रह्मावित या तत्वज्ञ होता है। अध्याय 32 में पुरुष की दार्शनिक व्याख्या है। क पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ख ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य यदवैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ग तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। घ तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा ता आपः स प्रजापतिः। ग यत्र विश्वं भवत्येक नीडं स ओतः प्रोतस्य विभू प्रजासु चरितस्य तन्तुं विततं विचृन्त्य तदपश्यत् तद्भवत् तदासीत्। छ अध्याय 34। इस अध्याय के प्रथम छह मंत्र शिव संकल्प सूक्त या शिव संकल्प उपनिषद कहे जाते हैं। इनमें तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु दिया गया है, अर्थात हमारा मन शुभ विचारों से युक्त हो। यह सूक्त मनोविज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें मन का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। मन जागते और सोते समय दूर तक जाता है। यह अति तीव्रगामी है, यह सर्वोत्तम ज्योति है। इसके द्वारा ही संसार के सारे कर्म किए जाते हैं। इससे मन के तीन विशिष्ट गुणों का उल्लेख है। एक प्रज्ञान या जानना, दो चेतस चित्त या स्मरण शक्ति, तीन घृत या धारणा शक्ति। यह समस्त ज्ञान और बुद्धि का आश्रय स्थान है। यह विश्व की समस्त चेतना का आधार है। सुयोग्य सारथी के तुल्य इस मन को अपने नियंत्रण में रखे। क यह जाग्रतो दूर मुदयति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। ख यत् प्रज्ञानमुत चेतो घृतिश्च यत् यज्ज्योतिरन्तर्मृतं प्रजासु। मंत्र 3। ग यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां। मंत्र 5। घ सुसारथिरश्वानि वतन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मंत्र 6। 7। अध्याय 40। इसको ईशोपनिषद और ईशावास्योपनिषद कहते हैं। यह यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है और उपनिषदों में इसे प्रथम स्थान मिला है। इसको उपनिषदों की आधारशिला माना जाता है। यह अध्याय दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्य बातें ये दी गई हैं। एक, ईश्वर सर्वव्यापक है, उसके द्वारा प्रदत्त धन का ही उपयोग करे, कभी धन का लोभ न करे। मंत्र 1। 2, 100 वर्ष तक निष्काम भाव से कर्म करते रहे, इस प्रकार हम कर्मफल के बंधन में नहीं पड़ेंगे। मंत्र 2। यह मंत्र भगवद गीता के निष्काम कर्मयोग की आधारशिला है। 3, आत्मा की आवाज को अवश्य सुनो, नहीं तो आत्महत्या का पाप लगेगा। मंत्र 3। 4, परमात्मा दूर समीप बाहर अंदर सर्वत्र विद्यमान है। मंत्र 5। 5, सब जीवों को आत्मवत देखो। मंत्र 6, 7, 6, परमात्मा निराकार एवं सर्वव्यापी है। मंत्र 8। 7, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग तथा अध्यात्मवाद और भौतिकवाद दोनों का समन्वय रखे, तभी यह लोक और परलोक दोनों सुखद होंगे। मंत्र 9 से 14। 8, शरीर नश्वर है, ओम ही एकमात्र रक्षक है। मंत्र 15। 9, सूर्य में जो महान शक्ति काम कर रही है, वही इस शरीर में भी है, इस प्रकार सो हम की अनुभूति करे, ईश्वर आकाशवत सर्वव्यापक है। मंत्र 17। क ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मागृद्ध कस्य स्विद्धनम्। मंत्र एक। ख कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम् समाह एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मंत्र दो। ग अविद्यया मृत्युम् तीर्त्वा विद्यामृत मश्नुते। मंत्र चौदह। घ यो असावादित्ये पुरुषः सो सावहम् ओम खम ब्रह्म। मंत्र सत्रह। नौ। यजुर्वेद के अति महत्वपूर्ण मंत्र। पूर्वोक्त मंत्रों के अतिरिक्त यजुर्वेद के कुछ अति महत्वपूर्ण मंत्र ये हैं। एक राष्ट्रीय प्रार्थना आ ब्रह्मन् मंत्र में चारों वर्णों के सर्वांगीण अभ्युदय कुलव्रत पालक नारियों सभ्य युवकों यथासमय वर्षा और योगक्षेम की प्रार्थना की गई है। योग का अर्थ है अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम का अर्थ है प्राप्त की सुरक्षा। अतः योग क्षेम का अर्थ है समग्र कल्याण। आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योति व्याधि महारथो जायताम योग क्षेमो न कल्पताम। दो। चारों वर्णों को वेद पढ़ने का अधिकार। एक मंत्र में कहा गया है कि यह शुभ वेदवाणी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सबके लिए है। यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्चाय च स्वाय चारणाय च। तीन चारों वर्ण तेजस्वी हो। मंत्र का कथन है कि चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी तेजस्वी हो। रुचम नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचम राजसु नस्कृधि रुचम विश्येषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम। चार। विश्व प्रेम मंत्र का कथन है कि सब मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मैं सबको मित्र की दृष्टि से देखूं और सब परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें। मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् मित्रस्याहम् चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। पांच। सब निर्भय हो। मंत्र का कथन है कि हम सब ओर से निर्भय हो, सारी प्रजा सुखी हो और सारे पशु निर्भय हो। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम् कुरु शम न कुरु प्रजाभ्यो अभयम् न पशुभ्य। छह। विश्व कल्याण की प्रार्थना। इन मंत्रों में कहा गया है कि यह सारा संसार निरोग और सद्भाव युक्त हो, मनुष्य और पशु सबका कल्याण हो, प्रत्येक ग्राम में सभी हृष्ट पुष्ट और निरोग हो। क यथा न सर्व मिजगद अयक्षमम सुमना असत। ख यथा शम सद द्विपदे चतुष्पदे विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन अनातुरम। सात। राष्ट्र प्रेम की भावना हो। मंत्र का कथन है कि हम स्वराष्ट्र की रक्षा में सदा अग्रणी रहे और सदा जागरूक रहे, वयम राष्ट्रे जागरियाम पुरोहिता। आठ। व्रत का महत्व। व्रत से मनुष्य दीक्षित होता है, दीक्षित होने से उसे दक्षिणा प्राप्त होती है, दक्षिणा से दक्षिणता से श्रद्धा उत्पन्न होती है और श्रद्धा से सत्य रूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है। व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षयापनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते।